ओम शांति। हमारे बीच बाबा की शिव शक्ति सेना की कमांडर आदरणीय सविता दीदी जी उपस्थित हैं। सभी एक हाथ की ताली से आपका हम स्वागत करते हैं दीदी जी। आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी जी वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं। मान सरोवर परिसर में जो भी कार्यक्रम होते हैं उनके आप डायरेक्टर हैं और बाबा ने ज्ञान का कलश माताओं पे रखा है और बाबा कहता है स्वर्ग का द्वार माताओं से खुलवाऊंगा। तो ऐसे महिला प्रभाग की आप राष्ट्रीय संयोजिका हैं। 1974 में आपको बाबा की पहचान मिली और आपने उदयपुर से MBBS किया और 89 में आपने अपने जीवन को बाबा की सेवा के लिए संपूर्ण रूप से समर्पित किया। आपने पांडव भवन की डिस्पेंसरी और फिर ग्लोबल हॉस्पिटल का जो चिकित्सा अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दी और विशेष आपको बड़ी दादी जी के स्वास्थ्य को संभालने का भाग्य प्राप्त है। आपने बड़ी दादी जी को भी अपने हुनर से बहुत अच्छा संभाला। बाबा की सेवाओं के लिए आप पूरे भारतवर्ष और विदेशों में भी UK, USA, रूस, कनाडा, UAE, मलेशिया, कैरेबियन बहुत सारे देशों में बाबा ने आपको भेजा है बाबा की सेवा के अर्थ। और आपने 2001 में अखिल भारतीय महिला आध्यात्मिक सशक्तिकरण अभियान, 2014 में नारी सुरक्षा हमारी सुरक्षा अभियान और 2016-17 में बेटी बचाओ सशक्त बनाओ इस तरह से राष्ट्रीय अभियानों का नेतृत्व किया है। आप मेडिकल विंग द्वारा आयोजित स्वास्थ्य मेले में भी अपनी सेवाएं दी हैं। मेरा भारत स्वस्थ भारत अभियान में देहरादून से माउंट आबू तक मुख्य वक्ता के रूप में अपनी सेवाएं दी। आपके बहुत सारे कार्यक्रम जैसे मेडिटेशन एज मेडिसिन और मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के द्वारा भी कॉर्पोरेट्स की भी सेवाएं करते हैं। बिरला सीमेंट, श्री सीमेंट, इफको, LNT वगैरह बहुत सारे संगठनों में आपने अपनी सेवाएं दी हैं अनगिनत। आपकी सेवाएं इतने सालों से अनगिनत हैं। और आप ब्रह्मा कुमारी के TV चैनल पीस ऑफ माइंड और अवेकनिंग चैनल में भी एक प्रवक्ता के रूप में अपने कार्यक्रम देते रहते हैं। पीस ऑफ माइंड चैनल के द न्यू ओमेन टॉक्सो तथा योग रहस्य टॉक्सो के 50 से भी अधिक एपिसोडों में स्पीकर रही हैं। आप महिलाओं की सेवा और सशक्तिकरण के लिए महिला बने महान पुस्तक का संकलन किया तथा नारी शक्ति त्रिमासिक पत्रिका के भी संपादिका हैं। वर्ष 2023 में आपको ग्लोबल एलियंस फॉर वोमेन एम्पावरमेंट संस्था USA द्वारा वोमेन एक्सलेंस अवार्ड प्रदान किया गया है और 2025 में आपको ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स लिबर्टीज एंड सोशल जस्टिस दिल्ली द्वारा ग्लोबल वोमेन ऑफ करेज एंड एम्पावरमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। आप बाबा की ऐसी राइट हैंड है यही सबसे बड़ी विशेषता है दीदी जी। शब्दों में जिनके अनुभव की गहराई है, मौन में भी जिनके सच्ची सच्चाई है, हर कदम पर सेवा जिनकी साधना है, उनका जीवन ही ईश्वर की आराधना है। न ताज न अभिमान न यश की चाह है, बस मानवता की सेवा ही जिनकी राह है। हाथों में चिकित्सा का हुनर, हृदय में शिव बाबा का प्यार है। ऐसी आदरणीय सविता दीदी जी कर्म योगी प्रेरणामय व्यक्तित्व हमारे बीच उपस्थित है। दीदी जी आज हमें बताएंगे व्यर्थ से हम मुक्त कैसे हो, समर स्थिति की प्राप्ति कैसे करें। तो निवेदन करती हूँ आदरणीय दीदी जी से।
ओम शांति, ओम शांति। यहाँ सभी को ये परम सौभाग्य मिला है पांडव भवन में भट्टी करने का। तो ये 3-4 दिन तो पूरी तरह से व्यर्थ से मुक्त हा? तो बाबा हमको पिछली कई मुरलियों से ये होमवर्क दे रहे हैं कि हमें व्यर्थ से मुक्त बनना है, क्योंकि जब व्यर्थ से मुक्त होंगे तो ही हमारी स्थिति समर्थ बनेगी। और समर्थ स्थिति वर्तमान समय की आवश्यकता है। और बाबा का इशारा ये भी है कि हमारी मनसा पावर ऐसी हो कि हम सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकें। अगर कहें फुल स्टॉप तो फुल स्टॉप लग जाए, है ना। व्यर्थ संकल्प चलने शुरू हुए और फुल स्टॉप लगाया तो फुल स्टॉप लग जाए। तो व्यर्थ संकल्प और विकल्प, तीन प्रकार के हमारे संकल्प चलते हैं, हमें पता है। एक तो होते हैं जो हमारे कार्यों से संबंधित होते हैं, वो तो चलेंगे ही, लेकिन उसके अलावा या तो विकल्प हो जाते हैं, विकारों के वश भी कभी चल जाते हैं संकल्प पर। ये फिर भी कम हो गए हैं, जब हम ज्ञान में चलते रहते हैं तो विकल्प उतने नहीं चलते, लेकिन व्यर्थ संकल्प उस पर हमारा अटेंशन थोड़ा कम जाता है, जिसको अलबेलापन बाबा कहता है। ऐसा तो होता ही है, ऐसा तो चलता ही है, तो उसके कारण व्यर्थ संकल्प समय प्रति समय हमारे चलते रहते हैं। तो व्यर्थ संकल्प चलने के कारण और उसका निवारण, तभी हम व्यर्थ संकल्प से मुक्त हो पाएंगे। तो पहला कारण, ज्यादा हम पास्ट में चले जाते हैं, पुरानी बातों को याद करने की आदत कईयों में होती है। जैसे आज की मुरली में भी बाबा ने कहा, क्या था, पुरानी बातों को अभी भूल जाओ, क्योंकि अभी तुम्हारे लिए नई दुनिया आ रही है और ये तुम्हारे दुख सदा के लिए अब दूर हो जाएंगे। तो पुरानी बातों में भी दुख की बातें ज्यादा याद करते हैं, इसने मेरे को इतना दुख दिया, हाँ, या इसने जो भी किया, अब वो किसी ने कुछ ऐसा बुरा कह दिया या बुरा कर दिया, तो हम महीनों, तो क्या, जब भी वो आत्मा मेरे सामने आएगी, वो व्यर्थ संकल्प का हम स्वरूप बन जाएंगे, पूरा रील घुमाएंगे, क्या बोला, क्या किया। तो बाबा हमेशा कहते हैं पास्ट इज पास्ट, जैसे कहा ना, क्योंकि क्या याद करना है, अब ये 5000 साल के बाद ही रिपीट होगा, जो भी ये ड्रामा हुआ वो सब कब होने आया अब दोबारा। तो बाबा कहते हैं बातों को भी अक्ल है कि वो अब 5000 साल के लिए विदाई ले गई, तो अभी हमें भी उसको विदाई दे देना है, और भविष्य में हम क्या सुख पाने वाले हैं उन सुखों के अनुभव में रहना है। और संगम युग में स्वयं बाबा हमें मिला हुआ है, तो वो बाबा से जो हमें सुख का अतीन्द्रिय सुख मिल रहा है, उसकी याद में, उसकी मौज में हमें ज्यादा रहना। तो फिर ये जो भी पुराना हमारे साथ घटनाएं हुई, हर एक के जीवन में होती हैं कुछ ना कुछ बुरी घटनाएं, ऐसा नहीं है सब कुछ अच्छा ही होता है, क्योंकि है तो ये, भले ही हम संगम युग पर हैं पर है तो कलयुग ही ना, तो कुछ ना कुछ ऐसी आत्माओं के साथ जो भी हमारे हिसाब किताब हैं आए होंगे, हमने उसे चुकतु भी किया, लेकिन याद नहीं करना है, जो बीत गया सो बीत गया। तो वो संकल्प हमारे बिल्कुल नहीं चलने चाहिए। तो जहां भी आए फुल स्टॉप लगाने की पावर काम करे, और फिर कई भविष्य की चिंता में फिक्र में चले जाते हैं, कई प्रकार की फिक्र होती है, और बाबा ने हमें क्या बनाया है, बेफिक्र बादशाह, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा होगा या वैसा होगा, ये फिक्र करनी है, क्या होगा, सब कुछ हर बात में कल्याण है। बाबा ने कहा अच्छा ही होगा, अच्छा संगम युग क्या है, अच्छे से अच्छा युग है, बाबा अच्छे से अच्छा है, तो हमारा कभी भी बुरा हो नहीं सकता, देखने में हो सकता है, कई बार बुरा लग सकता है, लेकिन हम बच्चों के लिए वो सदा ही उसमें कल्याण भरा हुआ है। तो इसीलिए बाबा को अपने सारे फिक्र दे करके, क्यों बेफिक्र हम हो जाते हैं, कौन फिक्र लेने वाला है हमारा, बाबा। तो फिक्र से फारिक कींदा स्वामी सदगुरु, ऐसे कहते हैं ना। तो बाबा हमेशा कहता है कभी भी अपने पर कोई बोझ मत रखो। आज की दुनिया तो है ही टेंशन की दुनिया, आज एक चिंता पूरी नहीं होती है दूसरी शुरू हो जाती, दूसरी पूरी नहीं होती है तीसरी शुरू हो जाती है, जो भी गृहस्थी में रहते हैं, जिनके लिए भी 100 बातें होती हैं, लेकिन हम कैसे रहते हैं? ग्रस्ती बनकर नहीं रहते, क्या बनकर रहते हैं? ट्रस्टी बनकर रहते हैं। तो सब कुछ बाबा का है, बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है। जिसको ये पक्का है, जो गृहस्थी में भी ट्रस्टी बनकर रहते हैं, उनको चिंता हो नहीं सकती। एक चित्र आता है ना बाबा का, जिसमें लिखा है बच्चे चिंता मत करो। कौन बैठा है? बाबा बैठा है। तो जिसको ये याद है, जिसको पक्का निश्चय है, तो जो निश्चय बुद्धि है वो निश्चिंत रहते हैं, उनको कभी चिंता हो नहीं सकती। क्यों? ब्रह्मा बाबा को कभी चिंता नहीं हुई। ऐसे थोड़ी यज्ञ में कोई बातें नहीं आई, आज तो ऐसी कोई भी बातें नहीं आती, लेकिन जो ओम मंडली में हुआ ऐसा होता है आज यज्ञ में? आज तो उन सब बातों से सब पार हो चुके हैं, लेकिन तभी भी बाबा ने कभी चिंता नहीं की, क्योंकि पक्का 100% बाबा पर अटूट निश्चय था बाबा का, और वो निश्चय के आधार पर हर पेपर को पास कर लिया, विजयी हो गए। चाहे बेगरी पार्ट था, खाने को नहीं था, तो भी बेफिकर, कौन खिलाने वाला है, कौन जिम्मेवार है? बाबा जिम्मेवार है। मैं भी बाबा का हूँ तो बच्चे भी किसके हैं? बाबा के हैं। तो इसीलिए कभी भी कोई भी बात आ जाती है तो किसको सौंप देना है? बाबा को। और आप देखेंगे बाबा कैसे पार कराता है। जैसे मक्खन से बाल होता है, पता ही नहीं चलता कैसे बात आई और चली गई। किसी को ऐसा अनुभव है कि देखने में लगता था बात बहुत बड़ी है, लेकिन महसूस ही नहीं हुआ कि इतनी बड़ी बात बाबा ने पार करा दी। किसी को ऐसा अनुभव है तो हाथ उठाओ। देखो, है सबको नहीं है, लेकिन कईयों को है, हमको भी है। तो ऐसा अगर हमको बाबा पर पूरा निश्चय है जो कहा, और हम बाबा पर छोड़ देते हैं टाइम पर, तो बेफिक्र होकर के पार तो करना ही है। जो भी बात आई है उसको पार तो करना ही होता है। अब कैसे पार करोगे? चिंता करके, फिक्र करके पार करोगे, टेंशन करके पार करोगे तो फेल, और अच्छा लडोल होकर के पार करोगे तो पास। तो पास होना है, फेल होना है? और बाबा की मदद भी मिलती है। अगर हमारी स्थिति स्थिर है तो फिर, या हमारी स्वस्थिति पावरफुल है, तो बाबा की भी मदद हमें सहज उस परिस्थिति से पार करा देती। इसीलिए कहते हैं स्वस्थिति से हमें परिस्थिति को पार करना है। फिर जैसे कहा, मानो कोई आत्मा के साथ हमारा हिसाब किताब है, उसने कोई हमारे लिए ऐसा शब्द कह दिया। कईयों की आदत होती है, कोई ना कोई ऐसा कमेंट कर देंगे कि बस सामने वाला बिल्कुल। तो अगर व्यर्थ संकल्प कब चलते हैं? जब हम फीलिंग में आ जाते हैं, और फीलिंग को बाबा फ्लू कहता है। वो फीलिंग में आ गए तो बस, फिर एक दिन क्या, दो दिन क्या। तो यहाँ बाबा की श्रीमत क्या है हमारे लिए? ना दुख देना है और ना दुख लेना है। तो हम तो नहीं देते, हम किसी को ऐसा नहीं बोलते, हम किसी के साथ ऐसा नहीं करते, लेकिन कोई मेरे साथ करता है तो फिर मेरे से सहन नहीं होता है, तो दुख लेना है। तो ऐसी बातों पर हमें ध्यान नहीं देना है। हिसाब किताब तो पता ही है ना, बाबा ने हमें कहा हमें चुकतू करने सारे हिसाब किताब। तो जब हम संगठन में आते हैं, खास ब्राह्मण परिवार का हमारा संगठन बहुत बड़ा है, और जो भी सेवा करते हैं हम संगठन में ही करते हैं, तभी भाव स्वभाव की बातें होती हैं, जो टकराव की बातें होती हैं। कई बार परिवारों में भी हो जाती हैं कि हम ज्ञान में चलते हैं, हमारे परिवार वाले ज्ञान में नहीं चलते, फिर वो कुछ ना कुछ ऐसा बोलते रहते हैं हमको, तो हम चलाते रहते हैं। पर एक टाइम ऐसा आता है कि बस, अब बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा। तो यहाँ पर जो बाबा की हमारी श्रीमत है कि अगर हम उन बातों पर ध्यान नहीं दें, पहली बात तो कि अगर वो कुछ कह रहे हैं और वो है मेरे अंदर, होता ही है कई बार, 1% तो होता ही है। अगर कोई हमें पॉइंट आउट कर रहा है, कमेंट कर रहा है, तो अगर हम अपने आप को चेंज कर ले, हमारा स्वभाव ही, हमें बाबा ने कहा संपन्न बनना है, हाँ, तो हम अगर अपने आप को चेंज कर लें, ठीक है, रादर कहते हैं ना, थैंकफुल होना चाहिए उनके लिए कि भाई उन्होंने मेरी बात मुझे याद दिलाई कि ये मुझे ठीक करना है। तो अगर हम उसको पॉजिटिव कर लेते हैं, जिसको बाबा कहते हैं नेगेटिव को पॉजिटिव करना, वो भी हमारे अंदर शक्ति है, तो फिर हमें फील ही नहीं होगा, बात ही खत्म, है ना। और उनके प्रति हम नेगेटिव भी नहीं होंगे। लेकिन मानो अगर नहीं है तो फिर मन पर नहीं लेना है। जो मम्मा सिखाती थी, मम्मा के पास एक बहन गई क्योंकि कचहरी लगती थी बाबा के दिनों में, इतना बड़ा संगठन था बाबा के समय में भी, तो मम्मा कचहरी लगाती थी। तो एक बहन ने कहा, मम्मा ये बहन ने मुझे आज ऐसा ऐसा बोला और ऐसी कोई बात नहीं है और मेरे को बहुत फील हुआ, मतलब बुरा लगा। तो मम्मा ने कहा, अच्छा बुरा लगा तो कहाँ से गया? तो कहा, मम्मा कान से गया। तो मम्मा ने कहा कि हमें पता होता है कि तूफान आ रहा है तो हम क्या करते हैं, खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं ताकि उस तूफान का असर हमारे घर में ना हो। तो जब तुमको पता था कि वो ऐसा बोल रही है और ऐसा कुछ नहीं है, तो तुमने अपने कान क्यों नहीं बंद कर लिए? कान बंद कर लिए माना तुमने इनकी बातों पर ध्यान ही क्यों दिया, माना दुख लिया ही क्यों। कहने का भाव वही था मम्मा का कि तुमने क्यों ध्यान दिया। तो ऐसा कई बार होता है और लोग हमारे बारे में गलत बातें भी कह देते हैं, कुछ गलत कलंक वाली बातें भी, सब तरह के लोग होते हैं। अभी जैसे हम मधुबन में रहते हैं इतने सालों से, तो ऐसे ही एक बार ऐसा हुआ कि किसी ने हमारे लिए कुछ गलत बातें कही और वो घूम फिर करके, अब वो डायरेक्ट हमसे नहीं कहते, आपस में एक दो को कहते हैं, फिर वो फैलना शुरू हो जाती है, फिर घूम फिर करके उस तक पहुंचती है जिसकी होती है। तो मैं सुन के भी मैं भी अवाक रह गई। मैंने कहा, ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। फिर मैं भी और अच्छे से ध्यान दिया अपने ऊपर कि क्या कोई ऐसी बात है क्या जो बताई जा रही है या फैल रही है। फिर जब मुझे लगा कि नहीं, सचमुच ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसने भी फैलाया है या तो उसकी गलत फहमी है या फिर होता है ना, कईयों को नीचा दिखाने का भाव होता है कि किसी तरह से इनका थोड़ा नाम खराब हो या जो भी। फिर मैंने कहा, मुझे ध्यान नहीं देना है, जब है ही नहीं तो मैं क्यों ध्यान दूं उसकी बात पर। तो मैंने बिल्कुल एक भी व्यर्थ संकल्प नहीं चलाया, क्यों कहा, कैसे कहा, कहना नहीं चाहिए, ये ऐसे माना। और जो कहने वाला था वो भी कोई सीनियर था, मतलब मेरे ही लेवल का समझो, तो मतलब हम सोच सकते हैं ना भाई, इतने ज्ञानी व्यक्ति होकर के ऐसी बात कैसे कर सकते हैं। तो पर मैंने अपने से प्रॉमिस कर लिया कि जब बात है ही नहीं तो मुझे बिल्कुल उसका चिंतन नहीं करना है। और बस जब मैंने उसको ड्रॉप कर दिया और उस आत्मा के प्रति अपना भाव भी नहीं बदला कि भाई इसने ऐसा, मुझे पता तो चल गया ना, क्योंकि हम भी इन्वेस्टिगेशन तो कर लेते हैं कि कहां से शुरू हुई है बात, तो फिर पता तो चल गया कि किससे शुरू हुई और कौन कर रहा है। तो मैं ये भी मैंने, जैसे बाबा ने हमें सिखाया कि फिर कोई कैसी भी आत्मा हो, क्या भी कर रही हो, हमें शुभ भावना रखनी, तो मैंने अपना भाव भी चेंज नहीं होने दिया उनके प्रति। और देखा मैंने कि कुछ टाइम के अंदर ही सब कुछ अपने आप ठीक हो गया, क्योंकि हमने उसको ध्यान नहीं दिया और ना ही वर्णन भी किया, ना ही किसी से कोई शिकायत भी की, मतलब किसी बड़ों को जाकर के भी हम शिकायत करें कि भाई ये मेरे लिए ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि आजकल तो थोड़ी कचहरी होती, मम्मा के टाइम में तो कचहरी होती थी तो बोल दो जो आपकी बात है, अभी तो ऐसा कुछ है नहीं। अभी तो उससे कई गुना बड़ा संगठन है, मधुबन में आज 2000 लोग समर्पित हैं और सेवा में भी 1000-1500 तो हमेशा ही यहाँ होते हैं, तो कितना बड़ा संगठन है बाबा के घर का। तो मेरे कहने का भाव यही है कि बाबा ने जो हमें सिखाया अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो व्यर्थ संकल्प चलने की कोई मार्जिन नहीं हमारी रहती। और ऐसे जो हमारा चिंतन मानो कभी चल भी जाता है तो हमें क्या करना है, मानो कोई बात को लेकर हमारा चिंतन चला तो बाबा हमें उसका समाधान बताते हैं रोज की मुरली। हमारे शुभ चिंतन समर्थ चिंतन का आधार क्या है? बाबा की मुरली। अगर मुरली हम रोज सुनते, हमारी मुरली मिस नहीं होती, और सिर्फ मुरली सुनते नहीं, फिर मुरली कैसे सुनते हैं उसका भी फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है नहीं पड़ता? आप घर में मुरली सुन रहे हैं, टीवी पर मुरली सुन रहे हैं, आप सेंटर पर आकर मुरली सुन रहे हैं, विधि पूर्वक एक मॉर्निंग मुरली सुन रहे हैं, एक आकर के शाम को मुरली सुन रहे हैं। कौन सी मुरली सबसे ज्यादा पावरफुल है? कौन सी सबसे ज्यादा अंदर जाएगी? कौन सी मुरली जाएगी मॉर्निंग में? और कब, कहाँ आकर के सुनी? सेंटर पर आकर जो मुरली सुनी वो छपती है अंदर, और फिर उसकी जो हमारी बैटरी चार्ज होती है ना, आप महसूस करेंगे अगर 2-3 घंटे तक तो आपको ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं पड़ता, वो अपने आप काम करती है एनर्जी। उसके बाद जब हम देह अभिमान में आना शुरू हो जाते हैं, तब जाकर के फिर थोड़ा पुराने संस्कार अपना रूप दिखाना शुरू करते हैं। लेकिन अगर हमने रिवाइज कर लिया, अगर वही 3 घंटे के अंदर बाबा, तो हम बाबा की श्रीमत क्या है, हमें विचार सागर मंथन करना है, उस ज्ञान को अपना बनाना है। जैसे वो गाय जुगाली करती है, खा करके उसको पचाती है, तब जाकर के वो खून बनता है, मांस बनता है, हमारा शरीर बनता है। तो ऐसे ही उस ज्ञान को अगर हम मनन करते हैं, मनन करते हैं, तो फिर आज बाबा ने क्या कहा कर्म योगी बनने के लिए, क्या कहा? नहीं, निरंतर योगी की बात नहीं, जो मुरली की मुख्य पॉइंट थी आज जी, बाबा ने कहा कि देह का आधार लेना है कर्म करने के लिए, देह का आधार लेना जरूरी है। तो देह अभिमान में आते हो लेकिन फिर तुरंत क्या हो जाओ, याद आ गया? तो आज की मुरली की मेन पॉइंट यही थी। बाबा ने कहा कर्म किए बिना नहीं रह सकते, लेकिन ये अभ्यास तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं कर सकता कि कर्म किया हमने, देह का आधार लिया और फिर हम देही अभिमानी हो गए, यानी कर्मेंद्रियों से हम न्यारे हो गए। तो जब चाहे हम कर्मेंद्रियों का आधार लें, जब चाहे हम कर्मेंद्रियों से न्यारे हो जाएं, तो ये कछुए के समान कला किसके अंदर है? वो हमारे अंदर है, बाबा ने हमें वो। तो ऐसे वो पॉइंट को अगर हम याद करेंगे, मानो आज के इस पॉइंट को, यहाँ तो चलो हम भट्टी कर रहे हैं, लेकिन जब भी हम अपने कार्य व्यवहार में हैं, तो ये बातें हमें कितना मदद करती हैं कि हम बिल्कुल भी उसमें फंसते नहीं हैं। हम निमित्त भाव से अपना कर्म कर लेते हैं और हमारी स्थिति भी वो बनी रहती है, हम हल्के रहते हैं, फरिश्ते के समान, जैसे बाबा कहता है डबल लाइट स्थिति में अपना कर्म किया, तो वो हल्कापन फिर चेहरे से भी नजर आएगा जैसी हमारी स्थिति होगी, क्योंकि ज्ञान के चिंतन से ही समर्थ स्थिति बनती, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। अगर व्यर्थ चिंतन चल रहा है तो चेहरे पर क्या आएगा, उलझन दिखाई देगी, है ना? चेहरा कैसा दिखाई देगा, थोड़ा उदास सा दिखाई देगा, कोई कह भी देगा क्या बात है आज, हा? आप थोड़ा थके हुए नजर आ रहे हो, या थोड़ा परेशान नजर आ रहे हो, दुखी नजर आ रहे हो, क्योंकि कहते ना दिल की बात बता देता है चेहरा। तो फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, आपका क्या चिंतन चल रहा है वो चेहरा तुरंत बता देता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं चेहरे और चलन से सेवा। तो चेहरे से सेवा कब होगी? व्यर्थ संकल्प चलाने से नहीं होगी। कब सेवा होगी? जब हमारे अंदर वो शुभ चिंतन, ज्ञान का चिंतन चलेगा, तो सिमर सिमर सुख पाओ। ज्ञान का सिमरन सुख देता है, ज्ञान का सिमरन हमें वो शक्ति देता है, बल देता है, तो वो चेहरे से नजर आएगा। और वही कर्म में आता है जैसे कहा, तो आपके चेहरे से वो खुशी, वो नशा, और जो बाबा कहता है हर्षित चित हम दिखाई दें, हर्षित मुख हम दिखाई दें, तो ऐसा चेहरा फिर सेवा करता है। जो हमारे नैन हैं उनमें रूहानियत दिखाई देगी, जितना हमारी वो आत्मिक दृष्टि वृत्ति होगी। और जो मनसा सेवा की बात भी बाबा हमें कहते हैं, मनसा सेवा भी हम कब कर पाएंगे? कब कर पाएंगे? जब हमारी मनसा इतनी पावरफुल होगी। अगर मनसा पावरफुल नहीं होगी तो फिर हम ठीक है सोचेंगे, एक स्थान पर हम बैठे हैं और हम इसकी सेवा करें उसकी सेवा करें, लेकिन जब उतनी पावर ही नहीं है संकल्प शक्ति में तो वो दूर तक पहुंचेगी ही नहीं वहां तक। तो फिर हम सोचेंगे मनसा सेवा तो करते हैं लेकिन मनसा सेवा का रिजल्ट तो मिलता नहीं। तो क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि मनसा उतनी पावरफुल ही नहीं है कि उतना ऑरा पावरफुल हो ना हमारा, जिसको लाइट हाउस बाबा कहता है, लाइट हाउस माइट हाउस वाली स्थिति होगी तो ही हम दूर दूर की आत्माओं को वो वाइब्रेशंस फैला पाएंगे। और नहीं तो 0 वाट का बल्ब भी जलता है, 100 वाट का बल्ब भी जलता है, तो कितनी रोशनी होती है उसकी, उतना ही बस उतने ही एरिया तक उसकी रोशनी होती है। तो ठीक है, हम जैसे कहा अपने घर के कल्याणकारी हैं या अपने सेंटर के कल्याणकारी हैं, अपने शहर के कल्याणकारी हैं या विश्व के कल्याणकारी हैं, वो किस पे डिपेंड करेगा? कितना हमारी वो चिंतन या संकल्प शक्ति पावरफुल है। तो ज्ञान जो भी हम सुनते हैं वो हम लक्ष्य रखें, ऐसे नहीं कि संडे के संडे आ गए सेंटर पर या गुरुवार के गुरुवार आ गए सेंटर पर, वो कोई मजबूरी है तो बात अलग है, नहीं तो फिर बहानेबाजी तो होती है ना हमारे पास कि आज ये काम था, आज वो हो गया, आज इसके कारण हम नहीं आ पाए। और आजकल तो हमारे पास इजीली मुरली अवेलेबल भी है, चाहे मोबाइल में सुन लो चाहे टीवी में सुन लो, लेकिन वही है कैसे सुनते हैं हम, काम करते हुए सुनते हैं तो कैसे सुनते हैं मुरली है? घर में होंगे तो कुछ ना कुछ चलता रहता है ना, उतनी एकाग्रता से हम बैठ करके नहीं सुनते। कोई उसी समय हमसे बात करने आ जाएगा तो हम बात कर लेंगे, कोई काम याद आ जाएगा तो काम भी करेंगे, कोई डोरबेल बजा देगा तो दरवाजा खोलने भी चले जाएंगे, कोई फोन आ जाएगा तो फोन भी अटेंड कर लेंगे, करते नहीं करते है ना। तो फिर हमने कितनी मुरली सुनी, फिर कोई पूछेगा मुरली में क्या था, मुरली तो बहुत अच्छी थी लेकिन क्या था पता नहीं। तो याद क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एकाग्रता से सुनी ही नहीं ना, तो एकाग्रता से सुनी नहीं तो अंदर कुछ गया ही नहीं, सुनी ना सुनी ऐसा हो गया। वैसे बाबा कहता है कि कोई भी हमें व्यर्थ की बातें करता है, पर चिंतन की बातें करता है, अभी ऐसे होता है ना व्यर्थ की बातें भी लोग हमसे करते हैं पर चिंतन भी करते हैं, तो वो एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, या तो सुनो ही मत, बिल्कुल मत सुनो। पर अगर नहीं मना कर सकते हो, कोई ऐसा व्यक्ति सुना रहा है जिसको आप मना नहीं कर सकते हो, तो फिर कैसे सुनना है? सुनते हुए भी नहीं सुनना है कि वो जरा भी मेरे अंदर ना जाए, ध्यान नहीं देना जिसको कहा हा? लेकिन यहां क्या करते हैं, वो व्यर्थ की बातों को तो सुनते हैं और ज्ञान सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं। कईयों का पुरुषार्थ इस तरह का होता है कि मुरली का नियम है बस, बाबा ने कहा है ब्राह्मणों का मुरली सुननी, कैसे भी सुन ली, जैसे भी सुन ली, बस सुन ली मुरली, फिर वो मुरली जैसे सुनते हुए भी हमने नहीं सुनी तो उसका जीवन में कोई स्वरूप में व्यवहार में आएगा? कुछ नहीं आएगा। रोज सुन रहे हैं और वहीं के वहीं हैं, संस्कार परिवर्तन होते नहीं, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए ज्ञान में चलते हुए, लेकिन वहीं के वहीं हैं। एकदम वहीं के वहीं नहीं होते, लेकिन जैसा बाबा हमसे चाहता है, जो परिवर्तन बाबा हमसे चाहता है, जो हमारी संपन्न स्थिति, जो बाप समान स्थिति हमारी होनी चाहिए, वो स्थिति फिर हमारी नहीं होती है। तो वो अपने आप से फिर दिल शिकस्त होना शुरू हो जाते हैं कई बार, और फिर उसके भी व्यर्थ संकल्प चलते हैं, मैं तो इतना पुरुषार्थ कर नहीं पाती, मैं मेरे को तो अपने में निश्चय भी नहीं है, इतनी तो हम देरी से ज्ञान में आए हैं, अब मुझे लगता नहीं कि मेरा कोई भाग्य, माना संकल्प, व्यर्थ संकल्प फिर कैसे चलाते हैं हम, अपनी कमजोरी के लिए चलाना चाहिए? चलाना चाहिए या क्या संकल्प चलाने चाहिए? बाबा कहते हैं मैं समर्थ बाप की समर्थ बच्ची हूँ, शिव बाबा सर्वशक्तिवान है तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और हम तो विजयी रतन है, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो संकल्प कौन से चलाने हैं? जो श्रेष्ठ सुमान के संकल्प बाबा ने हमें दिए, कमजोरी के संकल्प नहीं। अगर वो ही कमजोरी के संकल्प चलेंगे तो फिर पुरुषार्थ भी वैसा ही होगा, लेकिन अगर समर्थ संकल्प चलाए, सुमान की जो भी स्मृतियां बाबा ने दी हैं वो सब श्रेष्ठ स्मृतियां हैं, वो ऊंची स्मृतियां हैं हमारे लिए, तो वो ही स्थिति का हमें वो अनुभव कराते हैं। तो कभी भी थोड़ा भी कमजोरी का संकल्प मन में आए, तुरंत कौन से संकल्प में शिफ्ट कर देना है उसको, श्रेष्ठ संकल्प जो बाबा ने हमें जो स्मृतियां दिलाई। पांच स्वरूपों का जो अभ्यास बाबा कहता है वो कौन सी स्मृतियां हैं? वो हमारी स्थिति को ऊंचा बनाने वाली स्मृतियां हैं। मैं देवात्मा और मैं फिर पूज्य आत्मा, फिर फरिश्ता बनने, ब्राह्मण है अभी फरिश्ता बनने वाली, और निराकारी अपनी जो अनादि स्वरूप की स्थिति है। तो अनादि स्वरूप के जो भी हमारे गुण हैं उस हमारी स्वस्थिति है आत्मा की। तो जैसे ही उस स्मृति में हम जाते हैं हमारे अंदर वो पावर आ जाती है। और ऐसे ही कोई भी जो व्यर्थ बोल हमारे निकलते हैं, व्यर्थ बोल क्रोध के वश ही निकलते हैं कई बार, क्योंकि जब माया का प्रभाव होता है ना, वैसे तो हमें पता है कि हमें क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। समर्थ बोल के लिए बाबा कहता है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो और सोच के बोलो। तो ज्यादातर तो हम अटेंशन रखते हैं, और परिवार वाले भी महसूस करते हैं कि जब से ये ज्ञान में जाने लगे हैं इनके गुस्से में फर्क आ गया है, ये पहले जैसे गुस्सा नहीं करते। लेकिन अगर हम कहें कि हमारे मुख से अब ऐसे वचन निकलते ही नहीं जो किसी को दुख पहुंचे, जो समझते हैं वो हाथ उठा सकते हैं। हैं, थोड़े थोड़े हैं, चार पांच ने हाथ उठाया, तो जरूर आप अपने लिए ताली बजा सकते हो, क्योंकि ये भी एक विजय है कि आपने अपने आप पर, अपने क्रोध पर विजय पाई। कि कोई भी आत्मा हमारे लिए कैसा भी कर्म करे, गुस्सा कब आता है, मेरी बात नहीं मान रहे, कोई झूठ बोल रहा है, कोई हमसे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, या कोई हमारी निंदा कर रहा है, कमी निकाल रहा है, कोई भी कारण बनता है, बिना कारण के गुस्सा नहीं आता, और ये बनते ही रहते हैं। जहां भी हम रहते हैं वहां कोई ना कोई हमारे आसपास ऐसा होता ही है जो निमित्त बनता है कि हमें गुस्सा आ जाए। लेकिन फिर भी अगर हम गुस्सा करना माना, ऐसा कोई ना कोई बोल बोलना, गुस्सा हम बोल बोल के ही दिखाते हैं। कई बार ब्राह्मण जो हैं वो हाव भाव से भी गुस्सा करते हैं, सोचते हैं बोलेंगे तो ये सुना देंगे, ओम शांति में जाते हो और फिर भी ऐसा बोलते हो, तो फिर बोलते नहीं हैं, क्या करते हैं, फिर आंखों से दिखा देते हैं थोड़ा, या व्यवहार फिर किनारा करते हैं, यानी बोलना ही बंद कर देंगे। ऐसा भी हम गुस्से का रूप दिखाते हैं, लेकिन किसी भी रूप में हमारे से वो व्यवहार नहीं दिखाई देना चाहिए। तो ये हमारे ब्राह्मण जीवन में अगर कोई भी प्रकार का, इस प्रकार का व्यर्थ कर्म होता है, बाबा कहता है इसके साथ साथ फिर हमें अपने समय का भी ध्यान रखना है कि हमारा समय भी व्यर्थ ना जाए। आजकल बहुत सारे ऐसे साधन हैं जो हमारे समय को हम व्यर्थ गंवा देते हैं, क्योंकि ये समय संगम युग का बहुत वैल्यूबल समय है। बाबा तो कहता है एक सेकंड एक वर्ष के बराबर है। कई मुरलियों में सुनते हैं ना हम, बाबा कितना समय की वैल्यू बताते, क्योंकि हमें ये संगम युग का कितना समय मिला है, हम कितने समय से ज्ञान में, 90 साल हो गए संगम युग को, हमें कितना समय मिला है, और वर्षा तो हमें पूरा 21 जन्मों का लेना है। कोई कहेगा मुझे नहीं लेना है, या मुझे लक्ष्मी नारायण नहीं बनना है, या सतयुग के पहले जन्म में मुझे नहीं आना, सूर्यवंशी राजधानी में मुझे नहीं आना, कोई बोलेगा? तो लास्ट सो फास्ट जाना है, फास्ट सो फर्स्ट आना है, तभी हो सकता है। तो अगर मुझे लास्ट सो फास्ट जाना है तो फिर ये समय मेरा पूरी तरह से सफल होना चाहिए। तो मेरा समय सफल हो, और माया हमें दोनों तरह से, माना एक तो एक समय हमें मदद भी कर रहा है, आज का समय ऐसा है, ऐसे साधन हमें मिले हैं कि वो हमें पुरुषार्थ में उड़ती कला का भी अनुभव सहज करा सकते हैं, ना केवल जंप देने की बात नहीं, लेकिन आज हमारे पास सब क्लासेस हैं, हम जब चाहें जो क्लास सुन लें, मधुबन से हम सारा समय कनेक्ट रह सकते हैं, पूरे मधुबन के प्रोग्राम कहाँ जाते हैं आज, है ना, लाइव जाते हैं सोशल मीडिया पर, चाहे टीवी पर। तो मधुबन से जुड़ना माना भी बाबा से जुड़ना, तो अगर हम उसके लिए यूज करते हैं तो वो हमारे लिए, जैसे कहा फास्ट जाना और फर्स्ट आना, उसके भी वो निमित्त साधन है, बाबा ने जो कहा उसको वो सिद्ध करते हैं कि लास्ट वाले बच्चे कैसे फास्ट जा सकते हैं। लेकिन फिर अगर फंस गए तो उल्टी डायरेक्शन में चले गए, ये है सदुपयोग, और एक होता है दुरुपयोग, यानी अगर गलत दिशा में चले गए तो कहां समय बर्बाद होगा पता नहीं। अब उसमें जो अट्रैक्शन करने वाली चीजें हैं वो भी कोई कम नहीं है, और वो जो एडवर्टाइजमेंट वाले होते हैं वो भी होशियार होते हैं, उनको भी पता होता है किसी को कैसे ट्रैप करना है, तो वो उसी तरह का कंटेंट उसमें डालेंगे कि आप देखें ही देखें उसको। तो वो क्या है, भले गलत हम नहीं देख रहे, लेकिन समय कहाँ जा रहा है, समय तो गया ना, टाइम तो हमारा वेस्ट हो रहा है, मतलब उससे कोई हमें रिजल्ट नहीं मिलने वाली, कोई प्राप्ति नहीं होने वाली। तो ये भी हमें अटेंशन देना है कि हमारा समय व्यर्थ में ना जाए, क्योंकि हमें उतना समय अब नहीं मिला और उतना समय अब है भी नहीं, जिसको बाबा कहता है बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी। तो फिर अब कितना समय हमें पता नहीं, हम देख रहे हैं युद्ध तो चल ही रहे दुनिया में, वो कब वर्ल्ड वॉर में बदल जाए कोई कह नहीं सकता है, और फिर उसमें भी हमारा समय कितना है, आजकल तो अचानक एवर रेडी का टाइम है, कब किसका टाइम आ जाए किसको पता है नहीं। तो फिर जितना भी समय जो हमें शरीर निर्वाह के लिए टाइम देना है वो तो देना ही देना है, वो 8 घंटे तो हमारे हैं ही हैं, उसके अलावा हमारा समय वेस्ट ना जाए, ये हमें अटेंशन रखना है। तो वो चीजें जो हमें पुरुषार्थ में मदद कर सकती हैं उसे हम जरूर यूज करें, उससे जरूर हमारा, जैसे कहा कि हम उड़ती कला का अनुभव करते हैं, लेकिन टाइम बर्बाद ना हो ये हमें ध्यान देना है। वो बाबा ने हमारे लिए ही साधन निकाले, बाबा कहते हैं ना आज साइंस आपको मदद करने के लिए, ये साइंस की जो उम्र है वो उतनी है जितना संगम युग की उम्र है, तो बाबा ने आकर के ये इन्वेंशंस कराई हैं, क्यों कराई हैं, ताकि जल्दी से जल्दी हम अपनी गोल्डन एज को ला सकें, ये साधन तीव्रता लाने के लिए, कि कितना तीव्र गति से दुनिया का परिवर्तन करना है उसके लिए ये साधन सारे निकले हैं। तो ये सब साधन हमारी मदद के लिए, हम बच्चों की मदद के लिए, फिर वो तो कहते हैं ना तेरे भाने सबका भला, एक कहावत है ना चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला, तो हमारे भाने सारी दुनिया को भी वो भला, और सतयुग आता है तो भी सारी दुनिया का भला होता है, जिनको मुक्ति चाहिए उनको मुक्ति मिल जाती है, जिनको जीवन मुक्ति चाहिए उनको जीवन मुक्ति मिल जाती है। तो ये हमें किसी भी रूप में, माना चाहे हमारे थॉट पावर, माना अब हम बैठे हैं बैठे बैठे क्या सोच रहे हैं, कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर के बिना बात की बातें सोचते रहते हैं कोई, माना, क्योंकि हमारा मन पर हमारा अटेंशन नहीं है, मन सूक्ष्म है ना, तो कई बार मन पर हमारा ध्यान नहीं रहता है, तो हम अपनी संकल्प शक्ति को भी वेस्ट कर रहे हैं। एक समय को वेस्ट करने की बात है, एक अपने मन की शक्ति को वेस्ट करने की बात है। अगर हम नेगेटिव संकल्प में चले जाते हैं तब तो हम उसको कई गुना वेस्ट कर रहे हैं। माना मन एकदम कमजोर पड़ जाता है, अगर हमारा कॉन्फिडेंस कम हो गया, कोई बात में हमें भय लगने लगता है, ऐसी ऐसी जो मन की स्थिति बनती है वो किसके कारण बनती है, मन एकदम अशांत हो गया, ये सब नेगेटिव सोच के कारण, अगर हम नेगेटिव चिंतन में चले गए। लेकिन व्यर्थ चिंतन जो है वो हमें इस तरह का अनुभव नहीं कराता, लेकिन हमारी मनसा शक्ति जो है जैसे कहा वो कमजोर होती जाती है। तो हमारी संकल्प शक्ति पर हमारा अटेंशन होना जरूरी है, और उसके लिए बाबा के तहत समाने की शक्ति और समेटने की शक्ति ये हमारे अंदर होनी चाहिए। कोई भी बातों का विस्तार उसको क्या कर लेना है, समा लेना है। तो बातों के विस्तार में नहीं जाना है। अगर कोई बात को हम 10 शब्दों की बात को अगर हम 2 शब्दों में कह सकते हैं तो उसको कोशिश करें, और ऐसे ही मन में अगर वो बातों का विस्तार चल रहा है तो उसको भी जैसे कहा फुल स्टॉप लगाने की हमारी पावर, तो उसके लिए बाबा ने 3 विधियां बताई है हमको कि 3 बिंदु लगाओ। कौन से 3 बिंदु? मैं आत्मा बिंदु, शिव बाबा बिंदु और ड्रामा बिंदु। तो मैं आत्मा बिंदु हूं, तुरंत अपने आप को डिटैच कर लो। तो जितना हम अपने आप को डिटैच, जितना फास्ट हम अपने आप को डिटैच कर सकते हैं, अगर हमको इन्वॉल्व होना है, उसकी जरूरत है तो हम इन्वॉल्व हों, और अगर हमारी जरूरत नहीं है इन्वॉल्व होने की तो तुरंत हम विड्रॉ कर लें, है ना, तभी हम विस्तार को सार में ला पाएंगे। तो आत्मिक स्थिति में अपना अस्तित्व हो गए तो न्यारे प्यारे हो गए, साक्षी हो गए, साक्षी होकर के आप कोई भी सीन देखते हैं तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आता, तो फुल स्टॉप लग जाएगा कि भले बुद्धि जा रही है लेकिन तुरंत हमने उसको विड्रॉ कर लिया। और दूसरा बाबा का बिंदु, यानी जैसे ही हमने बाबा को याद किया, अब कोई भी बात के कारण हमारी बुद्धि जो है वो जा रही है बातों में, तो बाबा की मदद से वो हमारा फुल स्टॉप लगाने में हमें मदद मिलती है, तो बाबा की शक्ति हमें मिल जाती है। तो इसीलिए बाबा उस बिंदु की बात करता है, और इसीलिए बाबा वो ड्रिल करने की बात कहता है कि जब चाहे मैं निराकारी हो जाऊं, जब चाहे आकारी हो जाऊं, और जब चाहे साकार में आकर के कर्म करें। तो एक सेकंड में ये 3 स्टेप हम फास्ट फास्ट कर पाए, ये हमारी संपूर्ण स्थिति है कि निराकारी माना तुरंत निराकारी हो गए, आकारी माना तुरंत फरिश्ता रूप में, फरिश्ता रूप हमारा सेवा का रूप है, फरिश्ता रूप द्वारा हम कहीं भी जा सकते हैं, किन्हीं भी आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं, और साकारी रूप में दुनिया में हमें कर्म करना ही है। तो ये ड्रिल हमारी जितनी होगी, बाबा तो बहुत बार कहते हैं हर घंटे में कम से कम, पिछली मुरली में पीछे था मुरली में 10 मिनट, और अगर 10 मिनट नहीं तो कम से कम 5 मिनट, बाबा ने उससे कम नहीं बोला कि हर घंटे में इतना समय तो हमें ये ड्रिल करना है। तो ये हमें व्यर्थ से मुक्त करने में मदद करता है। तो और तीसरा ड्रामा का बिंदु कब लगता है, नथिंग न्यू, जो आया है कल्प पहले भी पास किया था, अभी भी कर रहे हैं, कल्प के बाद भी पास करेंगे। तो कल पहले भी मैं विजयी थी, अभी भी हूं, और मैं विजयी आत्मा हूं। तो जैसे ही वो ड्रामा का बिंदु लगाएंगे, बिंदु लग जाएगा। या फिर दूसरा तरीका है ड्रामा का बिंदु लगाने का, जो कहा कल्याणकारी है, हर बात में कल्याण है। तो अब कई बातें ऐसी होती हैं जिसमें कोई कल्याण नहीं दिखता, दूसरों को तो दिख रहा है इतना बुरा हो रहा है, इनका भी बिजनेस ज्ञान में चले और बिजनेस में लॉस हो गया, क्या कल्याण है। तब बिंदु लगा सकते हैं, क्या कहेंगे? ज्यादातर भाई होते हैं ना हमारे बिजनेस में, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं, तो कैसे बिंदु लगा देंगे? हिसाब किताब चुकतू हो गया, जो जो भी निमित्त बना उस नुकसान के, कल पहले हमने उसका नुकसान किया होगा, अभी इस बार उसने हमारा कर दिया। और जी ड्रामा में निश्चय बुद्धि कि इससे भी कुछ और अच्छा होने वाला होगा, या उससे आगे कुछ और बड़ा बाबा हमसे कराने वाला होगा, इसलिए ये जो है माना पॉजिटिव सोच सकते हैं ना, हम कुछ भी सोच सकते हैं। और कई बार ऐसा ही होता है कि वो कोई डायरेक्शन हमारी चेंज करनी होती है बाबा को, तो कुछ इस तरह का होता है कि फिर हम दूसरा सोचने लग जाते हैं उससे हट के। और कुछ और क्या कल्याण हो सकता है? जी बाबा ने उससे आगे शिक्षा देनी होती है, माना अनुभवी बनते हैं बाबा, जिसको कहता है कि अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़ी अथॉरिटी है। और अगर कोई ऐसी बात जिसको हमने अचल स्थिति से मानो आई है, लेकिन हमने उसको बाबा पर निश्चय रखते हुए, ड्रामा पर निश्चय रखते हुए पार कर लिया, बाद में हम ठीक भी हो जाते हैं, वो थोड़ा समय के लिए ही होता है जो भी होता है, तो फिर आगे के लिए हम ऐसी और भी कभी कोई बात आएगी हमारे जीवन में तो हम हिलेंगे नहीं, क्योंकि एक बार हमने उसको कर लिया। जैसे कोई भी चीज को हमने एक बार फेस कर लिया, दूसरी बार जब दोबारा हमारे सामने आएगी तो हमारे लिए इजी होगा, क्योंकि हम उसको पहले भी कर चुके हैं। तो इस अनुभवी, कोई भी बात जो भी जीवन में आती है वो हमें अनुभवी बनाती है, ये भी एक कल्याण उसमें समाया हुआ होता है। और कुछ हाँ, कि हम वही परिपक्व माना अनुभवी हो रहे हैं, तो वो फर्क पड़ जाता है। तो इसीलिए ये तीन बिंदु हम जब भी लगाएंगे, वेस्ट को अपने आप फुल स्टॉप लग जाएगा। और सबसे बड़ा जो लास्ट का पुरुषार्थ है, वो व्यर्थ को जीतने का ही पुरुषार्थ है, जो बाबा अभी हमें ये पुरुषार्थ करा रहे हैं। इतनी पीछे संडे की मूल्यां, जो अव्यक्त मूल्यां चल रही हैं, इतने समय से बाबा हमें ये कह रहा है, तो क्या समझते हैं वेस्ट को खत्म कर सकते हैं, नहीं कर सकते? जो समझते हम खत्म कर सकते हैं वो हाथ उठाओ, मेजोरिटी खत्म कर सकते हैं, तब तो बाबा को अच्छी रिजल्ट मिल रही है। हा? बाबा मुरली में भी कहते हैं, बाबा जब हाथ उठाते हुए देखते हैं तो बाबा बहुत खुश होते हैं बच्चों पर, तो बाबा आपको देखकर खुश हो रहे हैं कि सदा के लिए यहां से पांडव भवन की भट्टी से सदा के लिए संकल्प करके जाना कि वेस्ट बिल्कुल खत्म, हम सदा समर्थ आत्मा हैं, श्रेष्ठ आत्मा हैं और शक्तिशाली आत्मा हैं, हमारे पास व्यर्थ आ नहीं सकता। ओम शांति।